हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोद नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस सुंदर स्थान जिसका नाम रामताल है, आप सबका इस सुंदर स्थान में स्वागत है। रामताल ये वृंदावन क्षेत्र में है और सौभरी मुनि नाम के बहुत प्रसिद्ध मुनि हुए हैं, जिनका गोत्र वृंदावन में अभी भी उपस्थित है। बहुत सारे गांवों में बहुत सारे ब्राह्मण सौभरी गोत्र के हैं। उनकी ये तपस्थली है, यहाँ पर उन्होंने तपस्या किया था। यमुना जी यहीं से बहती थी, अभी पिछले 50 साल में बहुत ही आगे 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 चली गई है। यमुना जी सागर के समान विस्तृत थी पहले, लेकिन जैसे अभी समय बढ़ रहा है आगे तो वो सिकुड़ती चली जा रही है। तो जो हमारी इस रास्ते से यमुना जी बहती थी, जहाँ पर आप खड़े हो, तो द्वापर युग में तो वो कितनी विशाल थी, समुद्र के समान। तो ये यमुना जी का रास्ता है, ये यमुना जी का ही क्या कहते हैं रिवर बेड है, और यही से यमुना आगे बहती है। फिर यहाँ से वृंदावन मदन मोहन जी इमली तला केशी घाट करके आगे चले जाती है। तो यमुना के जल के अंदर ये तपस्या करते थे और इतने महान और इतने तपस्वी ऋषि थे कि सभी वेगों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर दिया था। तो गरुड़ जी यहाँ पर आते थे और यमुना के अंदर जो मछली है और जो सांप है उनको खाते थे, उनका भोजन है वो, कोई पाप नहीं उसके अंदर। हमको ये पता होना चाहिए कि कर्म जो है वो केवल मनुष्य को लगते हैं, किसी भी अन्य जीव को मनुष्य के अलावा कर्म का बंधन नहीं होता है। मनुष्य के जन्म में जो पाप किए हैं और जिस पाप के वजह से वो जानवर बने हैं, वो जन्म के पुण्य पाप पुण्य उनको भोगने पड़ते हैं उस जन्म में, लेकिन उस जन्म में कोई नए कर्म नहीं बनते। जैसे कोई कुत्ता फाइव स्टार होटल में फाइव स्टार बंगले में रहेगा, मर्सिडीज में घूमेगा, कोई कुत्ता गटर में सड़ेगा, ये उसके पिछले जन्म का जो मनुष्य जन्म था उसमें जो उन्होंने गड़बड़ किया है उसके वजह से उनको आनंद या दुख मिल रहा है, लेकिन उस जन्म में उनके नए कर्म नहीं बनते, केवल पिछले जन्मों का फल मिलता है। तो जब जानवर कोई शेर कोई अगर बकरी खाता है या कोई हिरण खाता है तो उसको पाप नहीं लगता। और हम लोगों को आपने कहा बताएंगे प्रभु जी फिर भगवान ने हम पर अन्याय क्यों किया, आप पर अन्याय नहीं किया, आपको परम भाग्य का वरदान दिया भगवान ने, क्योंकि ये जन्म जो है इस मनुष्य शरीर में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये यंत्र, ये सॉफ्टवेयर इसमें फिटिंग कर दिया है, और किसी भी जीव में उन्होंने ये सॉफ्टवेयर फिट नहीं किया है भगवान को प्राप्त करने का। और जब ये इतना कीमती सॉफ्टवेयर आपके अंदर फिट किया है तो उसका चार्ज भी आपको देना है, वो है कर्म। और वो गाइडेंस भी दिया है, उसका मैनुअल भी है, शास्त्र हमारे कैसे जीना है, क्या करना है, कर्म से मुक्त कैसे होना है, सारे रहस्य उसमें भेद कर दिए हैं, हमको उनको फॉलो करना है। तो इस यंत्र में जब हम रह रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन कुत्ता बिल्ली पंछी बनकर हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो गरुड़ जी यहाँ पर आते थे और वो अपना भोजन करते थे, तो फिर सारे सांप और मछलियाँ जो है ना परेशान हो गई। तो सांप जो है वो मछली से जरा श्रेष्ठ जीव है ना, और सांप कद्रु के पुत्र हैं, मैंने बताया ना आपको। तो वो कद्रु के पास गए, मैया हमारा जीवन तो समाप्त हो जा रहा है, हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा गरुड़ की वजह से। तो मैया ने कहा बड़े भाई के पास जाओ जो अनंत शेष है। तो अनंत शेष के पास गए, उन्होंने कहा अरे अब निश्चिंत रहो, उधर ही तुम्हारे जल के अंदर ही सौबरी मुनि ऐसे महान तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, वो सक्षम है आपके समस्या का समाधान करने के लिए। तो फिर वो लौट के अपने ही जगह पर आए। मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन इज ऑलवेज विद इन यू, यू कीप सर्चिंग, फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हैं जहाँ पर सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन जो है वो आपके पास ही रहता है हमेशा। हम कोई ऐसे कस्तूर मृग के नाभि में इत्र होता है, तो दुनिया भर घूमता है कि कहाँ से खुशबू आ रही है, लेकिन खुशबू उसके नाभि से ही आती रहती है। वापस आए सौबरी मुनि के पास और उन्होंने निवेदन दिया अपना, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो निवेदन जब दिया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसका समाधान करूँगा। और जैसे ही निवेदन दिया और उन्होंने कहा समाधान करूँगा, गरुड़ जी तभी आए मछली और सांप खाने के लिए। तो तुरंत सौबरी मुनि ने गरुड़ को बताया दोबारा यहाँ आओगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो गरुड़ ने वंदन किया चले गए। मैंने आपको 5 मिनट पहले ही बताया था कि गरुड़ विष्णु तत्व है। इंद्र का वज्र भी केवल उसने दिया इसलिए एक पंख जला सका, नहीं तो वो भी मुमकिन नहीं था। इतने महान थे वैष्णव, साथ साथ शक्तिशाली भी हैं और परम भक्त भी है भगवान के। उनको मुमकिन था कि वो सौबरी मुनि का शाप काट सकते थे या उनको भी शाप दे सकते थे रिटर्न में, लेकिन वो देखते हैं कि मुनि है, भगवान के तपस्या में लीन है, तो मैं उनको दुखी नहीं करना चाहता। उनकी इच्छा है मैं यहाँ ना आऊँ और कहीं जाऊँगा, वहाँ पर मछली खाऊँगा, जो भी है चले गए। तो गरुड़ जी ने सौबरी मुनि के इस वाक्य को शाप के रूप में नहीं लिया, लेकिन भगवान जो गरुड़ जी के भगवान हैं उन्होंने सौबरी मुनि के इस वाक्य को शाप के रूप में लिया, समझा और वैष्णव अपराध के गिनती में गिनती कर दिया उसका। मतलब भगवान की दृष्टि से यह वैष्णव अपराध हो गया। फिर उसके बाद वो तपस्या करने लगे अपने, जैसे व्यवधान आए बीच में, वो निवेदन लेके आए तो थोड़ा जग गए थे, फिर ध्यान में लग गए, जल के अंदर ही है सब। उसके बाद में एक नर मादा मछली जो है वो ऐसे जल में है ना, अभी जल के जीव है तो जल में भी संभोग करेंगे, सब अपना अपना परिवार का नियोजन वहाँ होता है। तो आप सोचिए कि वो जितना सालों हजारों साल जल के भीतर तपस्या कर रहे हैं, तो अनंत बार मछली ना नर्मदा मछली उनके सामने आई होगी ना, कभी ना कभी तो आई होगी, लेकिन अनंत बार आई होगी, लेकिन एक बार भी वो नर्मदा को संभोग करते हुए देखकर विचलित नहीं हुए। लेकिन ये घटना होने के बाद में जब पहली बार नर्मदा मछली उनके सामने आई तो उनको भोग लेते हुए देखकर इनके मन में काम वासना जागृत हो गई, इतनी जागृत हो गई कि वो पूरे पीड़ित हो गए उससे, कंप्लीटली एकदम ऐसे मैड हो गए। तो हमारे गुरुजन हमेशा बताते हैं कि जब वैष्णवों का दिल हम दुखाते हैं या वैष्णवों को शाप देते हैं या वैष्णवों को कठोर वचन बोलते हैं, उनका अपराध करते हैं, तो काम वासना दावाग्नि की तरह हमारे अंदर धधक जाती है। सबसे पहला इफेक्ट जो है ना वो काम वासना प्रज्वलित होने में होता है। इतने सालों की तपस्या करके सारे वेगों पर नियंत्रण किए हुए साधु सौबरी मुनि, जैसे ही ये वचन उच्चारण किया उन्होंने, काम वासना से इतने मतलब जलने लगे, उसमें जल के बाहर आ गए, बाप रे अभी मैं, मुझे अभी कन्या चाहिए, मुझे विवाह करना है, मुझे इस आनंद को लेना है। इतने भाव विभोर काम से हो गए थे कि उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं जल के अंदर था, मेरा सब चर्म जो है वो लटक रहा है। होता है ना आप लोगों, हमारे घर में जो बाई जब बहुत देर पानी में साफ करती है तो कैसा होता है, उंगलियां सफ़ेद हो जाती है ना, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बाहर हमेशा पानी में रहने से कुछ शरीर में अंतर होता है, ये तो पूरे शरीर पानी में था कई साल तक, तो उनकी चमड़ी कहते हैं लटक रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, उसके ऊपर सफ़ेद रंग, उसके ऊपर फंगस, हाँ प्रकाश जल जल के जो वनस्पतियाँ होती है वो शरीर पर उग रही है उनके, इतनी लंबी दाढ़ी, कठोर तपस्या की वजह से पूरा सिकुड़ा हुआ चेहरा, हाँ लंबी जटाएं, ऐसा उनका भयंकर रौद्र स्वरूप था। तपस्या ऐसी होती है कठोर एकदम, लेकिन उनको अभी इतना काम वासना ग्रस्त कर चुकी है कि उनको ये भान भी नहीं है कि वो दिख कैसे रहे हैं। तो अभी क्या करें, पत्नी कौन देगा मुझे। तो उनको एक बात याद आती है, बहुत समय पहले राजा मानता था कि राज्य में अवर्षण हुआ था, यानी कि दुष्काल, वर्षा ही नहीं हुई थी कई साल तक। तो उन्होंने सौवरी मुनि को बुलाकर वहाँ पर एक यज्ञ करवाया था, जिसके वजह से मानता था कि राज्य में वर्षा हुई थी, तो ये उपकार हुआ ना। तो इस उपकार की उनको याद तभी क्यों आई कि मैंने इन पर उपकार किया है तो मुझे ये अपनी कन्या देंगे, मेरा अधिकार ना, आई कैन एनकैश माय उपकार। तो सीधे उनको याद आया, तो सीधे उसी अवस्था में, काम वास्ता में, तप्त अवस्था में राजा मानदाता के दरबार में गए और राजा को कहा कोई कन्या आपको मुझे पत्नी के रूप में दे दो। तो राजा ने देखा कितना भयंकर रूप है उनका, कौन करेगा शादी, राजा को 50 कन्याएं थी। तो राजा भी धर्म संकट में पड़े कि भाई अगर मना करेंगे तो शाप देंगे, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, तो भी रास्ता कैसे निकाले। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, हमारे अंतपुर में जाइए, 50 कन्या में से जो आपको वर लेगा उस पर विवाह कर लेना, आपकी मर्जी उनकी मर्जी, मतलब अपने आप को छुटकारा कर दिया उन्होंने। फिर वो गए, पहली को पूछा तो वो बोले नहीं नहीं मैंने मैंने मेरी बहन बहुत सुंदर है, मेरी बहन बहुत सुंदर है। तो उसके पास गए तो बोला मेरी बहन मुझसे भी सुंदर है, ऐसा करके सबने टाल दिया, तू तू मैं करके। उसके बाद में उनको ध्यान में आया कि इतनी सब सुंदर युवतियाँ मुझे मना क्यों कर रही हैं, क्योंकि मेरा रूप ही भयंकर है, मैं तो उसको भूल ही गया था। तो फिर उन्होंने ब्रेक लिया बीच में और अपने योग बल से एक सुंदर राजकुमार अपने आप को बना दिया, देवता से भी सुंदर। और फिर आए वो, और जब उन्होंने तब कन्याओं को पूछा तो मैं तू क्यों, तू तो मेरी सौतन हो गई, तू नहीं आना, मैंने नहीं, मेरे पति बनेंगे, मेरे पति बनेंगे। सभी लोगों ने उनके पीछे पति बनने का इच्छा प्रकट किया। तो सौवरी मुनि ने कहा ठीक है, सभी 50ों की शादी करूंगा। राजा का भी मन ना जीव भांडत पड़ला, चलो भाई मैं तो बच गया शाप से। तो वो राजा भी अभी क्या कहें, सभी कह रहे हैं मैं करूं, और इनकी भी इच्छा है तो मैं क्या बोल सकता हूं। उन्होंने अपने ही दरबार में उनको 50 कन्याओं के साथ विवाह कर दिया, और 50 कन्याओं को लेकर विवाह करके वो इस जगह दोबारा आए, जिस जगह तपस्या करके इतने साल बिताए हैं इस जगह आए। उन्होंने ब्रह्मा जी से एक भी तत्व न लेकर अपने ही बल से 50 महल खड़े कर दिए यहाँ पर। पंच महाभूत से कोई भी तत्व नहीं लिया, मतलब यहाँ का ईंट नहीं लिया, यहाँ का जमीन नहीं लिया, मट्टी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, अपने ही योग बल से, मंत्र बल से उन्होंने 50 महल बनाए, और 50 महल में 50 रूप में अपने आप को विभाजित कर दिया, और 50 महल में 50 रूप में 50 पत्नियों का उन्होंने भोग लिया हजारों साल तक, और हर एक पत्नी को 50 बच्चे दिए, 100 बच्चे दिए, 100 सन्स। अगर आप जग रहे हो तो बताओ कितने हो गए पुत्र उनके, 5000 के 5 लाख, 5000 ही सही है, 50 × 100। तो देखिए आप कितना परिवार हो गया उसका, 50 पत्नियां, 5000 पुत्र, कैसे चलाया होगा गृहस्थी उन्होंने। हमको तो एक बच्चा भी होने की बहुत तकलीफ होती है आजकल, लेकिन हजारों साल सुंदर सुंदर कन्याओं का भोग लेने के पश्चात अचानक उनको होश आया, इतना समय बिताने के बाद ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो बैठे वो चिंतन में, और उन्होंने चिंतन करके वो रिवाइंड करते 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 अपने जीवन की घटना में गए कि शुरू कहाँ से हुआ। शुरू मैंने गरुड़ को कहा था यहाँ आओगे तो मर जाओगे, यहाँ से शुरू हुआ था। तो उनको पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपने पत्नियों से कहा कि अभी मैं ये सब त्याग करने वाला हूँ। तो पत्नियाँ भी विरक्त हो गई और 50 पत्नियाँ, और वो उन्होंने फिर यहाँ तपस्या आरंभ की। और तपस्या आरंभ करने के बाद में यहीं से सौवरी मुनि और उनके 50 पत्नियों को मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो सारी जर्नी यही हुई है, तपस्या, वैष्णव अपराध, राजा के पास जाना, विवाह करना, तप भोग लेना, फिर पश्चाताप, फिर तपस्या और फिर मोक्ष। तो ये बहुत पवित्र स्थान है। तो इसमें इस कथा से हम केवल वैष्णव अपराध का जो महीनता, क्या कहते हैं उसको, भयंकर स्थिति है ना वैष्णव अपराध की, उसको हम समझ सकते हैं। एक होता है पाप, जब हम मांस खाते हैं या कोई और कोई चीज़ करते हैं तो उसको पाप कहते हैं, उसका एक फल होता है। और वो फल जो है ना, वो यमराज और यमदूत और उसके एजेंट लोग देते हैं उनके खाते में। लेकिन जब अपराध होता है ना तो भगवान स्वयं दंड देते हैं उनको। अपराधी, वैष्णव अपराधी को क्या दंड देना है, ये स्वयं अपने भगवान ने अपने हाथ में रखा है। और बहुत भयंकर होता है। जैसे आप शराब पियेंगे, मांस खाएंगे, तो भी आपके कभी न कभी मुक्ति हो सकती है उस पापों के फल से। लेकिन वैष्णव अपराध ये सारे पापों से भी भयंकर घटना है। इसलिए अगर आपको वास्तव में भक्ति में प्रगति करना है तो कभी भी किसी भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे 15 साल बाद में आया होगा। तो बोले जूनियर है, इसको क्या है, डांटो इसको। दिल नहीं किसका दुखाना चाहिए, क्योंकि कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, कौन जानता है भगवान के सिवा। बताओ किसने पिछले जन्म में कितने प्रगति की होगी, अभी अभी जन्म लिया होगा, इस पिछले जन्म में संत बन गए होंगे और अभी थोड़ा पूरा करने के लिए आ गए होंगे। हम लोग ने अभी अभी शुरू किया होगा, लेकिन 15 साल पहले आ गए होंगे। हमारा जो गणित है ना, वो लौकिक गणित है, भगवान का दिव्य दृष्टि है, भगवान सबको जानते हैं। इसलिए कभी भी किसी भक्त में जूनियर सीनियर का भेद नहीं करना चाहिए। वो पहले आया था, मैं बाद में आया था, वो जूनियर है, ये सीनियर है, मैं डांट सकता हूँ। किसी भी वैष्णव को कभी दुख नहीं देना चाहिए, वचन से, कृति से, विचार से, किसी प्रकार से वैष्णव को कभी कष्ट देना नहीं चाहिए। वैष्णव के प्रति गलत विचार रखना, बोलना कुछ नहीं लेकिन मन में उसके प्रति नेगेटिव विचार रखना, ये भी अपराध माना गया है। 6 प्रकार के अपराध है वैष्णवों के। वैष्णवों को देखकर प्रसन्न नहीं होना, उसको देखकर क्रोध आना या उसको देखकर मन में किंतु परंतु के विचार आना, दर्शनम न हर्षनम, ये भी एक वैष्णव अपराध है। वैष्णव बहुत कीमती वस्तु है, इसलिए उसके इतने नियम बनाए भगवान ने, उसका महत्व समझाने के लिए। और वैष्णव कौन है अगर आपको जानना है तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसकी व्याख्या की है। 1 साल में चैतन्य महाप्रभु को भक्त ने पूछा, भगवान वैष्णव कौन है? तो भगवान ने कहा, जो भी मेरा नाम लेता है, भगवान का नाम उच्चारण करता है, वो वैष्णव है। अगले साल दोबारा प्रश्न पूछा गया कि भगवान वैष्णव कौन है? तो उन्हें बताया, जो मेरे नाम, मतलब भगवान नाम में अपने आप को समर्पित कर चुका है, पूरी तरह से डेडिकेटेड है, वो वैष्णव है। फिर अगले साल दोबारा पूछा गया कि कौन वैष्णव है? तो भगवान ने और सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जिसकी उपस्थिति में दूसरों को भगवान नाम लेने की प्रेरणा हो, वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के वैष्णव हैं। तो जो कोई अभी अभी नाम शुरू कर रहा है, नाम जब शुरू कर रहा है, वो घिलौना भक्त है, और जो संत बन चुके हैं वही महान भक्त है, उनका अपराध नहीं करना, ऐसे नहीं। जो जो व्यक्ति इस दुनिया में भगवान का नाम लेता है, जरूरी नहीं कि वो हरे कृष्ण संप्रदाय में हो, बहुत सारे संप्रदाय दुनिया में है, सब भगवान नाम लेते हैं अपने अपने तरीके से, किसी का तुच्छ और ऊंचा नीचा नहीं मानना चाहिए। सब जो भगवान नाम लेते हैं वो आदरणीय वंदनीय होता है, उनका अपराध नहीं करना चाहिए। अभी कल हम लोग वहाँ गए थे देहकुंड, एक जगह मैंने आपको जानबूझ के दिखाई नहीं, क्योंकि उसमें बहुत कबूतर का विष्ठा मल पड़ा था, ठीक है। तो फिर कथा समाप्त हुई तो मैंने उनको पूछा कि महाराज जी, मैंने ना हमारे यात्रियों को वो दिखाया नहीं, क्योंकि उसमें इतना मल पड़ा था, मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि ये गोवर्धन शिलाएं हैं। तो बताया, देखो ऊपर इतने सारे यहाँ पर कबूतर के अंडे और कबूतर बैठे हैं, उनकी विष्ठा गिर रही है, और हम उनको मार नहीं सकते क्योंकि वो सब वैष्णव हैं। वृंदावन धाम में सब कबूतर और जीव भी सब वैष्णव भगवान के भक्त हैं, उनकी सेवा में अलग रूप से आते हैं, इसलिए वो मार नहीं सकते हैं। कोई यहाँ पर एक चबूतरा बांध दे उसके ऊपर तो फिर वो बच सकते हैं। तो यहाँ का भाव कैसा है कि यहाँ पर हर जीव दिव्य जीव है, ये समझ समझना कि जो मनुष्य जीव है यहाँ पर जन्म लेकर वही वैकुंठ जाएंगे, गोलोक धाम जाएंगे। यहाँ पर जो भी कीटक बना हुआ है, जो गाय है, जो सुअर है, जो भी कुछ है, बंदर है, सबका आखिरी जीवन है यहाँ पर, सबका आखिरी जीवन है। और यहाँ पर जन्म लेकर जो अपराध करेगा, धाम में रहकर जो वैष्णव ब्रजवासी बनकर अपराध करेगा, वो फिर भयंकर जन्म लेगा, या बंदर बनेगा, सुअर बनेगा, और उस जन्म में बहुत कष्ट प्राप्त करेगा, लेकिन जन्म लेगा यहीं वो। और यहीं से एक बार जन्म लिया मनुष्य के रूप में, अपराध भी करेगा दोबारा तिबारा यहीं आएगा, लेकिन यहीं से गौलोक जाएगा, वो बंबई में नहीं जाएगा जन्म लेने के लिए। यही जन्म की महान महात्म्य है, महिमा है। तो इसलिए ये वैष्णव अपराध जो है ना, ये नाम अपराध माना गया है, बहुत भयंकर चीज़ है ये, और इससे हमको बचना चाहिए। अगर हमको वास्तव में भगवान के विषय में रुचि है और वास्तव में भगवान को प्राप्त करने की तमन्ना है और साधना में हम लगे हुए हैं, नियम पालन करते हैं जप का, तो हमें इस भयंकर अपराध से बचना चाहिए। इसका तुलना की गई है मदांध हस्ती अपराध। अगर आपने सुंदर ये जो कोई सुंदर बगीचा बनाया हुआ है, इतना सुंदर मेंटेन किया है, क्या क्या पेड़ लगाए, फूल लगाए, अगर दारू पीकर जिसको बहुत भयंकर नशा हो गया है, ऐसे हाथी को यहाँ भेज दिया जाए तो क्या करेगा वो? उध्वंस कर देगा पूरा पूरा विध्वंस, मतलब हर एक पौधा हर एक पत्ता सब जमीन पे मिलेगा आपको। इतने सालों के मेहनत से इतना वन उपवन तैयार किया, लेकिन 10 मिनट में मदांध यानी कि जो नशा पे चूर हो चुका है, ऐसा हाथी आएगा अंदर तो सब वो खत्म कर देगा। वैसे आपने इतने सालों से भजन किया होगा, भक्ति की होगी, लेकिन वैष्णव अपराध आप करेंगे तो वो आप हाथी को छोड़ रहे अपने बगीचे में, भक्ति वाले बगीचे में, भक्तिचा मळ्यामध्ये यू विल सेंड, हाथी को भेज रहे हैं आप, पूरा विनाश करके ही छोड़ेगा वो, आपका जो भी आपने अचीव किया है सब खत्म कर देगा वो। इसलिए अगर वास्तव में हम गंभीर हैं तो हमको बचना चाहिए वैष्णव अपराध से। इससे हम सौभरी मुनि, मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि सौभरी मुनि इतने पतित नहीं थे, लेकिन भगवान को हम लोगों को जो शिक्षा देनी थी उसमें एक रोल अदा किया उन्होंने। भीष्मदेव को भगवान ने रोल दिया था कि भीष्मदेव भी अगर असत्य का पक्ष लेते हैं तो उनका भी वध हो जाएगा, इसलिए भीष्मदेव को रोल दे दिया कि तुम भाई विपक्ष में जाओ और वहां से युद्ध करो, फिर तुम्हारा मौत करके मैं लोगों को बताऊंगा, देखो भीष्मदेव जैसा महान व्यक्ति भी होगा ना, असत्य के पक्ष में जाएगा, सर्वनाश होगा उसका। उस तरह से सौभरी मुनि जैसे महान तपस्वी भी अगर वैष्णव अपराध करते हैं तो भी वो काम वासना के वश में आकर जीवन को बर्बाद करेंगे, इसलिए उनको रोल दिया है। इसलिए हमको नहीं समझना चाहिए कि अरे सौभरी मुनि कितने पतित थे, देखो कितने कामुक हो गए, वो सब लीला है भगवान की। अपने गिने चुने सरेंडर्ड शरणागत भक्तों को वो उपयोग करते हैं और उनको रोल देते हैं, जिन पर विश्वास है उनको वो भयंकर रोल दे सकते हैं, है ना। यमराज देखो, अभी यमराज इतने महान वैष्णव है, हमने उनको भी आहुति अर्पण किया उस दिन, यम भागवताय स्वाहा। तो यमराज को सब लोग को किसको पसंद नहीं व्यक्ति वो, लेकिन आप बताओ जीव को दंड देने का काम कौन करेगा? तो भगवान ने वो खाता ना बड़े विश्वास के व्यक्ति को दिया है, जो उनके ट्रस्ट वर्दी है, उनको वो उस स्थान में बैठने से आप सबके अप्रिय हो जाओगे, कोई आपका मुंह नहीं देखना चाहेगा, ऐसा आपको चाहेगा, आप चाहेंगे ऐसा कभी? लेकिन वो भी एक सेवा है, वो भी एक डिपार्टमेंट है, वो भी किसी को करना है, तो उन्होंने यमराज को चुना क्योंकि यमराज उसके लायक हैं, उसके योग्य हैं, सबके द्वारा अप्रिय होने पर भी भगवान की बड़ी अप्रूप सेवा कर रहे हो। तो यहां से ही वो कालिया की लीला संबंधित है, क्योंकि सौभरी मुनि ने गरुड़ जी को शाप दिया, इसलिए गरुड़ जी का जमुना जी के जल में आना बंद हो गया, जमुना जी में आना प्रवेश निषिद्ध हो गया। आगे जाकर कालिया का और गरुड़ का युद्ध हुआ है, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जमीन पर हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ, कालिया के 1000 फन थे, उसमें 100 फन बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इतने विष भरा था उसके अंदर। तो गरुड़ जी ने उसको मार मार कर पीट पीट कर पीट पीट कर भगाने लगा, तो जब जीवित हानि होने की संभावना हुई कि मैं मर जाऊंगा, तब कालिया ने क्या किया, उसको याद आया कि हमारे सौभरी ने इनको शाप दिया है, तुरंत वो यमुना जी के पानी में छुप गया, वहीं पर अपना बस्तान बसाया। गरुड़ ने देखा ठीक है मेरे शापित जगह पर यह घुस गया है, तो ठीक है जाने दो उसको, फिर वो चले गए यहाँ से। तो फिर आगे जाकर भगवान ने कालिया का वध किया है, वध नहीं किया, उसको दमन किया है। सुना है कहानी उसकी? 10:01 हो गया है, 10 मिनट में बता दूंगा, ठीक है। वो इतनी सुंदर कहानी है कालिया की। एक बार भगवान हमारे गेंदोवा नाम के गांव में खेल रहे थे, देखो कैसा अद्भुत चीज़ है, यहाँ पर जहाँ पर गेंद खेली वहाँ का नाम पड़ा गेंदोवा, गांव का नाम ही गेंदोवा है, गेंदोवा या गेंदोखर या गेडो ऐसा नाम है उसका, केवल भगवान उसमें गेंद खेले थे इसलिए नाम पड़ा गेंदोवा। तो श्रीदामा उस दिन गेंद लेकर आया था अपने घर से, और श्रीदामा के गेंद से गेंद खेल रहे थे, कैसे कोई उछाल रहा है तो पकड़ रहा है, फिर दूसरा उछाल रहा है, दूसरा पकड़ रहा है, दूसरा फेंक रहा है, ऐसे करते करते ना भगवान के जहाँ हाथ में वो गेंद आई, भगवान ने उसको जोर से फेंका, दूर तक फेंका, तो वो गेंदुआ गांव नंदगांव के पास है। जब हम पावन सरोवर गए थे ना, तो पावन सरोवर कहाँ मुड़े, उसके आगे आप गए नहीं, मैं गया थोड़ा आगे मोती कुंड तक, उसके आगे वो गेंदुआ गांव है। तो वहां से जो गेंद फेंकी वो सीधा वृंदावन में आके जमुना में गिरी। अभी सीधा वहां बोले लगा मेरी गेंद वापस करो। तो भगवान ने कहा मैं भी गेंद ले आया हूँ, ले लो नई गेंद ले लो ना, उसमें क्या है, वो छोड़ो उसको, माला माजस बॉल पाइजे, मुझे मेरी, बच्चे होते ना कि मुला मेरे को मेरा ही चाहिए। बहुत समझाया सब लोगों ने उसको, नहीं जिद, उसका जिद्दी रह गया वो, बोलता नहीं मुझे मेरी गेंद चाहिए। ठीक है चलो फिर जमुना जी में चलेंगे। भगवान को यहाँ पर आकर कालिया दमन करने के लिए बहाना चाहिए था, सब लोग आए यहाँ पर। अच्छा इसके पहले भी एक घटना हुई है, वो ऐसी है कि देखो यमुना किनारे में राधा रानी ने भगवान को मुरली बजाना सिखाया है, डांस करना सिखाया है, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है मुरली मनोहर, लेकिन उसके गुरु कौन है, और राधा रानी है। पूरे वर्ल्ड में वो नटराज के रूप में फेमस है ना, नृत्य करने में रास में एकदम निपुण है भगवान, उनको नृत्य करना किसने सिखाया, राधा रानी उनके गुरु हैं। तो राधा रानी से नृत्य सीखे हुए कृष्ण एक बार गोपियों के बीच में आए और बहुत ऐसे क्या कहते हैं उसको, गर्व से डांस करने लगे, मतलब ऐसे रोब जमाते हुए। तो गोपियों ने कहा इतना क्यों इतराते हो, हमारे श्रीजी ने आपको नृत्य सिखाया, इसमें इतना क्यों इतराते हो, इतना क्यों भाव खाते हो। तो उन्होंने कहा ये स्टेप मैंने उनसे नहीं सिखा, ये मेरा स्टेप है। नहीं नहीं तुम सब चीटिंग करते हो, सब कुछ उनसे सिखाया हुआ है, नहीं 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 ये मेरा स्टेप है, ऐसा बहुत बहस होती है उनके बीच में। तो गोपियाँ कहती है अगर तुमको इतना ही गर्व है अपने स्टेप्स के ऊपर तो हमको एक ऐसा डांस दिखाओ जो कभी किसने किया नहीं होगा, तब हम मान जाएंगे आपको। तो भगवान के मन में ये भी था कि गोपियों को दिखाना है अद्भुत डांस, इसलिए वो यमुना किनारे आए। उस समय कहते हैं कि यमुना जी में कालिया के वास्तव्य होने की वजह से इतना भयंकर विष फैल गया था, उसके केवल होने से, देखो गलत आदमी होने से कितना दुष्परिणाम होते हैं, केवल होने से कुछ कर नहीं रहा वो, खाली पानी के नीचे रह रहा है अपने परिवार के साथ। तो कहते हैं कि कई फीट तक यमुना जी के जल के स्तर के ऊपर हवा में वो बाष्प, जहरीला बाष्प रहता था, कोई पंछी उड़ेगा ना ऐसा डेड। यमुना के किनारे जितने भी पेड़ थे, पौधे थे, बेलियां थी, जितने भी जीव सृष्टि थी, समाप्त, नो लाइफ, ओनली सन्नाटा, ऐसा भयंकर स्थिति थी। और यमुना जी बह रही है और डोह भी बना हुआ है, तो ग्वाल बाल भी दूर से आए ना, तो प्यास लगी उनको, सीधे जाके यमुना जी में पानी पिया, पानी पीते ही खत्म हो गए सब लोग, मृत हो गए, सब जमीन पर गिर गए मृत होकर। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कैसे मेरे बालक हैं, कुछ दिखा ना, आओ ना ताओ, सीधा पानी पी लिया। तो भगवान ने एक दृष्टि प्रेम की उनके ऊपर ऐसी घुमाई, सब जीवित हो गए। से कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, अगासुर के मुंह में गए तभी भी भगवान ने उनको जीवित किया था। तो फिर भगवान फिर अपने प्लान में रेडी है वो ना, वो तो सब लोग खड़े हो गए, तो देखा अरे भयंकर पानी यहाँ पर, कोई पुरुष कुछ है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, ऐसे पी लिया, हरे हमारे कन्हैया की कृपा से हम बच गए। वो सोच रहे तब तो भगवान ने अपना फेटा उतार कर कमर को बांधा ऐसे कस के और पेड़ पर चढ़ गए कदम्ब के, और पहलवान की तरह ऐसे हैप हैप ऐसे करके, बोलते ना ऐसा करते ना पहलवान, वो करके खड़े हो गए और अभी जंप करने वाले हैं, तब सीधामा बोल रहा है नहीं 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 मत जाओ, मुझे गेंद नहीं चाहिए। तब तक तो भगवान ने छलांग लगाई दी, क्योंकि तब तक उनको पता चला था कि कालिया दह है, इसमें कालिया है, इसमें विष है, अभी मेरे लिए बॉल के लिए मेरे भगवान यहाँ पर कूदने वाले हैं, तो उसमें तो भगवान कूद ही गए। तो उसी पेड़ पर गरुड़ जी ने कलश रखा था, इसलिए वो पेड़ एक अकेला जीवित था, क्योंकि कुछ अमृत की बूंदे गरुड़ ने डाली थी उसके ऊपर। दूसरा कारण ये बताते हैं कि भगवान ने जैसे ही पैर रखा वो पेड़ जीवित हो गया, ये भी बताते हैं। ले लो जल्दी लो। तो छलांग लगाते ही, इतना जोर से छलांग लगाई, इतना सा बालक, लेकिन भगवान ने ऐसा लीला किया वजनदार कि पूरा पानी उछल के सब जगह फैल गया वो, और पूरे भगवान कालिया जहाँ रह रहा था वहां तक पहुंच गए। इतना बालक स्विमिंग करने लगे, तो कालिया को लगा इतनी हिम्मत, मेरे पास तो फिरकने की भी किसको शक्ति नहीं है, तो ये बालक इतना हिम्मतवान कि मेरे जल में कूद कर मुझे चैलेंज दे रहा है, तो फिर उनका भी बहुत लंबी कहानी है, बहुत घमासान युद्ध हुआ, पानी के नीचे पहले युद्ध हुआ और बहुत सारा कालिया के मुंह से खून वो निकला और वो सरफेस पे आया, तो तब तक खबर पहुंच गई कहाँ पर, नंदगांव में, क्योंकि ये भयंकर खबर थी ना, अभी कालिया के विषैले पानी में कन्हैया ने छलांग लगाई है, कुछ ग्वाल बाल भाग गए और नंदगांव पहुंचे। उस दिन बलराम जी का बर्थडे था, इसलिए बलराम जी उस दिन नहीं आए थे और बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, ये गौचारण करने चले गए थे, तो बर्थडे सेलिब्रेशन बंद करके नंद बाबा, रोहिणी, बलराम जी और बाकी बड़े गोप सब कैसे आए होंगे पता है आपको? गुरु जी ने बताया इस बार कि कृष्ण के चरण चिन्ह कहाँ गए हैं, उसका पीछा करते 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 वो पहाड़ों से इसमें जमीन पे मट्टी में चरण चिन्ह कहाँ जा रहे हैं, वो ढूंढते ढूंढते वो कालिया घाट पहुंच गए। उनको पता नहीं कालिया घाट किधर है, और देखा तो क्या, जल के ऊपर रक्त का स्तर फैला हुआ है, तो कालिया का है कि कृष्ण का है क्या मालूम। देखो माता का और पिताजी का क्या भाव है, अभी वो देख रहे हैं कि बालक कूद चुका है अंदर, तो यशोदा मैया कहती मैं भी कूद जाऊंगी, मुझे नहीं जीना है अभी, क्योंकि निश्चित हो गया कि कालिया के अंदर कृष्ण बच नहीं सकते। नंद बाबा भी भाग रहे हैं, तो 50-50 लोग उनको पकड़ रहे हैं, नहीं नहीं मैया, नहीं नहीं बाबा, अपने जाएंगे अपने जाएंगे, तो वो जाने को नहीं दे रहे हैं अंदर, तो वो बेहोश होकर गिर गई। इतनी व्याकुलता थी सबके अंदर, सब हाय हाय करके रो रहे, बड़े गोप छोटे गोप फ्रेंड्स गाय सब रो रहे। फिर भगवान ने कहा इतना एंग्जाइटी अपने भक्तों को देना नहीं चाहिए, तो भगवान ने बहुत देर युद्ध करने के बाद में उसको ना कालिया ने कस लिया था उनके अपने क्या कहते कॉइल्स के अंदर, और वो कस रहे थे, तो भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उससे निकल गए, वापस अपने रूप में आ गए। फिर उन्होंने कालिया के सर पर छलांग लगाई और कालिया ऊपर आया अपने फनों के साथ में, और उसके तने हुए जो फन थे ना, विष से तने हुए, टाइटली स्वोलन, उस पर भगवान नृत्य करने लगे। वो चरण कमल जो मक्खन से भी अधिक मुलायम होते थे, जो गौचारण जाते समय सारी गोपियां विचार करके ही रोती थी कि इतने कोमल चरण कमल अगर पत्थर कंकड़ कांटों पे गिरेंगे तो क्या बीतेगी हमारे कन्हैया के ऊपर, ये सोच से उसका घर में रोती थी। वो चरण कमल किसी के सर पे गिरेंगे तो लगेगा क्या, उनको कुछ लगेगा क्या, इतने कोमल चरण, बोले हवा घूम रही है ऐसा लगेगा आपको। लेकिन वही चरण कमल जब कालिया के सर पर गिर रहे थे तो हजारों वज्रों का आघात हो रहा था उसके सर पे, और एक एक चरण कमल के आघात से वो पूरा अग्नि और पूरा विष ज्वाला के साथ में बाहर निकलता था, और वो टाइट जो फन है वो ऐसे जिस जिस में विष था उसमें अपने पैर रखा और उसको गिरा दिया। और केवल यही काम नहीं कर रहे कि भाई यहाँ गए ऐसा किया, यहाँ गए ऐसा किया, ऐसा नहीं, वो डांस कर रहे हैं, डांस बहुत ब्यूटीफुल डांस कर रहे हैं। गोपियों को कहा था ना ऐसा अद्भुत नृत्य दिखाओ, तो हम लोग कैसे नृत्य करते हैं, हम लोग को ऐसे नृत्य करने के लिए ना एकदम सख्त जमीन चाहिए या ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसा अगर आपने ऐसा स्टेज बना दिया तो डांस कर सकते क्या उसके ऊपर, तो डांस वाले रुक जाएगी, बोले कि सर ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है, हम गिर जाएंगे इसके अंदर, ठीक बना उसको बाद में करें डांस करेंगे। लेकिन कृष्ण ने अस्थिर भूमि पर नृत्य किया, अस्थिर स्थान पर नृत्य किया, जो अभी ऐसा तना हुआ है पर ऐसे हो जाएगा, लेकिन उसमें भी कृष्ण ने बहुत सुंदर नृत्य किया, और इतना सुंदर नृत्य किया कि आकाश में गंधर्व की यक्ष किम पुरुष सब जमा हो गए, जो नृत्य में वाद्य में सब में निपुण हैं, और वो भगवान जिस ताल पर नृत्य कर रहे हैं उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा और नृत्य के द्वारा, लेकिन वो अपना अपना प्रयास करते रहे और कभी उनको पकड़ नहीं पाए भगवान के ताल को। और गोपियाँ अभी सब लोग दुखी थे पहले ना, अभी सब खुश हो गए, अरे कितना अद्भुत डांस हो रहा है, ऐसा डांस कभी देखा नहीं, हमने तो इसको सिखाया नहीं कभी, ऐसे सांप के फन पर डांस कैसा कर सकते हैं। तो बहुत देर तक उन्होंने डांस किया और साथ साथ में चुन चुन के उसके फनों पर पैर रखकर एक एक फन का सारा विष भी निकाल रहे हैं, विष के साथ में द्वेष निकाल रहे हैं, जो एनवी जो है ना वो जलन उसका जो द्वेष स्वभाव था वो सब नष्ट कर रहे हैं। अंतिम में जब इस सारी हजारों फनों में से सब विष नष्ट होकर कालिया मलूल हो गया तो भगवान ने डांस करना बंद कर दिया। जब ये विष नष्ट हो गया सब उसका, तो कालिया शुद्ध भक्त हो गया, क्योंकि विष होने से वो भक्त नहीं था, विष नष्ट हुआ, ऊपर से भगवान के चरणों का स्पर्श हो रहा है, इसलिए वही वो शुद्ध भक्त बन गया। मतलब एक्सप्रेस डिलीवरी है ये, कोई हजारों साल तपस्या जप करने का टाइम नहीं लगा उसको, उधर के उधर ही ऑन द स्पॉट भक्त बना दिया। उधर गरो बलराम जी ऐसे खड़े हैं पेड़ के पास ऐसे, वो सोच रहे हैं अरे मैं जब अनंत शेष बन के आया तो मेरे ऊपर भी डांस नहीं किया उन्होंने कभी, कितना भाग्यशाली, क्या कर्म किए उसने, इतने क्या पुण्य किए कि मैं भी नाग हूँ और मेरे भी हजारों फन हैं, मैंने भी पृथ्वी को धारण किया है मेरे बीच वाले फन में, तो इन्होंने मेरे ऊपर कभी डांस नहीं किया तो कालिया मुझसे भी अधिक भाग्यशाली है, ऐसा बलराम जी सोच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वार्तालाप हुए उसमें। फिर आखिर में जब कालिया भगवान के वज्राघात मक्खन से भी मुलायक चरणों के द्वारा होने वाले अनंत वज्राघात से मरने ही वाला था, उस समय उसकी पत्नियां जो है नाग पत्नियां वो वहां पर आई, अपने पुत्रों को नाग पुत्रों को सामने लेकर ऐसे आई, क्योंकि क्या है ना बालकों को देखकर थोड़ा सा कृपा उत्पन्न होती है हमेशा, बड़ा आदमी आएगा तो हम ऐसे मूड में रहते मारने के उसके, लेकिन बालक को सामने क्या थोड़ा सा ठंडे हो जाते हैं हम लोग। तो उन्होंने बालकों को आगे करके सभी पत्नियां आई है, वो सब पत्नियां भगवान कृष्ण की भक्त थी, वो बहुत बड़ी भक्त थी, उन्होंने बहुत सुंदर श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की है कि हमारा पति यहाँ बहुत पापी है, बहुत द्वेषी है, बहुत उसके अंदर विष है, पाप है, लेकिन आप उनको माफ़ कर देना, कृपा करके उनको माफ़ कर, ऐसे बहुत सुंदर श्लोकों में प्रार्थना की है। भक्तों ने प्रार्थना की इसलिए भगवान ने उसका मारने का प्लान कैंसिल किया, जिसको उसका मृत्यु निश्चित था। इसलिए हम संकट में अगर पापों का फल भोगते भी रहेंगे, लेकिन अगर कोई भक्त हमारे लिए प्रार्थना करता होगा तो हम बच सकते हैं। इसलिए हमेशा हम भक्तों को कहते हैं प्लीज प्रे फॉर मी, आई एम प्रेइंग फॉर माई सेल्फ, लेकिन मेरी प्रार्थना जो मैं मेरे लिए कर रहा हूँ वो सुनेंगे कि नहीं इसका गारंटी नहीं है, लेकिन अगर दूसरा भक्त मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो शायद सुनते हैं, क्योंकि जब खुद के लिए करते हैं सुनने की संभावना कम होती है, लेकिन दूसरे के लिए जब करुणावश प्रार्थना करते हैं तो भगवान तुरंत सुन लेते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा भक्तों को कहते हैं आप वृंदावन जा रहे हो प्लीज़ प्रे फॉर मी। तो नाग पत्नियों के प्रार्थना की वजह से वो बच गए। तो भगवान ने उनको कहा अभी आप चले जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर, क्यों उनको अभी शुद्ध भक्त बन गए ना, अभी क्या है अभी तो संत बनेगा तो इधर रहो, लेकिन तुम्हारे वजह से वृंदावन में बहुत भय पैदा हो गया है, तुम बने होंगे शुद्ध भक्त लेकिन तुमको देखकर ही लोग डरेंगे कि इसने इतना विष फैलाया था सबको मार दिया था अभी भी यही है वो, तो आपके पास कोई आएगा नहीं प्लस लोग भयभीत रहेंगे, इसलिए मेरे ब्रजवासियों के आनंद के लिए यहाँ से आप चले जाओ। तो वो फिजी आइलैंड में गए हैं, वो फिजी आइलैंड में शुद्ध भक्त संत महात्मा कालिया का मंदिर है और पूरा फिजी देश जो है वो कालिया भक्त संत कालिया की पूजा करता है, आज भी उनका बड़ा विशाल मंदिर है वहां पर। लेकिन अलग अलग कल्पों में अलग लीला किया भगवान ने। एक कल्प में भगवान ने क्या किया, कालिया को शुद्ध कर दिया और भेज दिया, फिर दोबारा बुलाया, थोड़ा सा पार्ट टू रह गया भाई आ जाओ, पार्ट टू बाकी रह गया, तो आ गया वापस, वैसे ही जमुना में गया, वैसे ही फन खड़ा कर खड़ा हो गया। उस बार भगवान ने सारी गोपियों को भी फन पे लिया और कालिया के शीश के ऊपर रास लीला किया, एक में किया, दूसरे में उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि अभी तो शुद्ध भक्त बन गया है चलो कुछ सेवा चाहिए ना उनको, क्योंकि सेवा मांगी भाई सेवा में रखो, सेवा में रहूंगा तो मैं ऐसे पाप में ऐसे कार्य नहीं करूंगा, द्वेष नहीं करूंगा, तो ठीक है मुझे ना जरा स्वर्ग लोगों की सैर करने की इच्छा है, तो पंछी बन जा और हम सैर करके आएंगे। तो वो सर्प पक्षी बन गया, सर्प भी है और पक्षी भी है, वैसे ही पक्षी ने परीक्षित महाराज को दर्शने का वो था ना तक्षक, तो भगवान ने सर्प पक्षी कालिया के ऊपर आरूढ़ हो गए और सारे स्वर्ग लोगों का सैर किया भगवान ने और सारे देवता लोग बड़े खुश हो गए, भगवान ने दर्शन दिया, भगवान उनको ऐसे ऐसे करते 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 सब देवताओं को हाथ दिखा देते, पूरा ब्रह्मा लोक तक गए, फिर पृथ्वी में आए, फिर कालिया को भेज दिया वापस। इस तरह से सुंदर लीला जो है कालिया की वो कालिया घाट पर हुई। और उसके बाद में भगवान जब बाहर आए तो ठंडे जल में इतने ठंडे हो गए थे तो एक टील पर चढ़ गए, मैंने बताया आपको ये ऑलरेडी, 12 सूर्यों ने उष्णता दिया और प्रस्कंदन सरोवर तैयार हो गया, वो लीला भी हुई। भगवान एक कार्य में अनेक कार्य पूरे करते, देखो गेंद का बहाने से उधर आए और नृत्य भी दिखाया, कालिया का गर्भहरण भी किया, द्वेष हरण भी किया, नागपत्नियों का भक्ति प्रेम स्वीकारा, प्रस्कंदन सरोवर बनाया, 12 सूर्यों को सेवा दिया, कितना काम किया उन्होंने, और इतना खाली हमको मालूम है, इसके आगे भी बहुत सारा होगा जो हमको मालूम नहीं होगा। तो कालिया मर्दन भगवान की, कालिया घाट पर अगर हम नहीं भी जा पाएंगे फिर भी यहीं से कालिया घाट की प्रार्थना कर लीजिए, वहाँ पर हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी द्वेष है, हम बड़े भक्त बने हुए लेकिन दिल में वो द्वेष का विष अभी तक है, और कभी कभी बीच में ऐसा प्रकट होता है, वो है ना, वो बुदबुद बबल्स की तरह। हाँ, कोई भक्त को हमारे से अधिक सम्मान मिल रहा है, ये सब भक्ति के सर्कल के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं बात कर रहा हूँ, भक्त बनने के बाद की बात। अरे उसको ज़्यादा कृपा मिल रही है, महाप्रसाद तो उसी को मिलता है, मुझे मिलता ही नहीं है, वो प्रेसिडेंट बन गया मंदिर का, मैं तो ऐसे ही सामान्य भक्त रह गया। उसको देखो कितना पोजीशन है, पावर है, लोग दंडवत करते हैं, माला पहनाते हैं उसको, मुझे नहीं करते। ऐसे हमारे अंदर वाले प्रॉब्लम्स है सब, ये तो द्वेष हमारे सब सबके अंदर है। भक्त नहीं बनेंगे, बाहर भी द्वेष करते हैं, इसके पास बंगला है, गाड़ी है, इसकी बीवी सुंदर है, इसका पति सुंदर है, बहुत अधिकारी है, हमारे पास कुछ नहीं है, द्वेष करते हैं हम लोग। हमारे पास द्वेष दो प्रकार के होते हैं, मेरे पास वो नहीं है जो उसके पास है, और देखो आई डोंट हैव विच ही हैज, और कौन सा होता है द्वेष दूसरा प्रकार का, उसी के लिंक में है वो। तो मेरे पास नहीं, हाँ मतलब मेरे पास नहीं हुआ तो चलेगा, उसको पास नहीं होना चाहिए वो, ये दूसरा प्रकार का द्वेष है। तो एक को कहते हैं एनवी, एक को कहते हैं जेलसी। तो दोनों हमारे अंदर ना धक-धक रही है अग्नि की तरह। तो केवल भगवान ही इस दोष को नष्ट कर सकते हैं। जो कालिया के ऊपर चढ़े नाच किया, तो कालिया को मुक्त होने का कोई चांस नहीं था, भगवान ने चुना कि मैं जाऊंगा और डांस करूंगा उसके ऊपर, उसको पाप से मुक्त करूंगा, विष से मुक्त करूंगा। तो हम प्रार्थना करते हैं कालिया मर्दन भगवान से कि हमें इस भयंकर रोग से मुक्त कीजिए, क्योंकि द्वेष के कारण ही हम लोग सब लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर हमारे अंदर द्वेष नहीं होता तो हम भगवान के साथ गौलोक में होते, द्वेष किया इसलिए यहाँ पर है, और यहाँ तब तक रहेंगे जब तक द्वेष है। जब द्वेष समाप्त हो जाएगा उसी समय भगवान आपको उठाकर अपने धाम में ले जाएंगे। द्वेष हमारा सबसे बड़ी बाधा है, और द्वेष के कारण फिर काम वासना, क्रोध, लोभ, मत्सर, ये सब जो है ना, क्या कहते हैं, मद मोह जो है, वो द्वेष के कारण उत्पन्न होता है। द्वेष उसकी जड़ है। आप कितना भी काम क्रोध पर विजय प्राप्त करोगे, मत्सर रहेगा मन में, द्वेष रहेगा, तो फिर वो पैदा हो जाएंगे। इसलिए प्रार्थना कीजिए कालिया मर्दन भगवान से, कृष्ण से, कि वो हमारे भी पाप भरे फनों पर नृत्य करें और हमारा भी विष निकाल दें और हमको भी शुद्ध भक्त बना ले। और दूसरे भक्तों से भी प्रार्थना करना कि जैसे नागपत्नी ने प्रार्थना किया, आप भी प्रार्थना करना, आपकी प्रार्थना सुनेंगे, हमारा पाप नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ये वही रामताल कुंड है जिसके अंदर, जल के अंदर तपस्या की गई थी। और हमारे परम मित्र हैं एक विनीत नारायण जी, जो कालचक्र नाम के अंक के संपादक हैं, निर्माता हैं, और बहुत बड़े हमारे मित्र हैं, वो ब्रजवासी हैं। उन्होंने इस जगह पर रिसर्च किया। हम यहाँ पर 35 साल से आ रहे हैं, तो कई बार हमने यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जंगल था पूरा। शास्त्र से रिसर्च करके ढूंढ के निकाला कि यहीं पर वो जगह है जहाँ पर सौभद्र मुनि तप किया था। तो उसकी खुदाई की जमीन के लेवल से 25-30 फुट नीचे खुदाई की, तब उनको उस कुंड के निशान मिले जो JCB से भी टूट नहीं सके। ईंटें और पत्थर तक वो पहुंच गए, जो JCB से टूटना भी असंभव हो गया, तब वो समझ गए कि हम उस स्थान तक पहुंच गए हैं। फिर उसका खुदाई करके अच्छी तरह से पुनर्निर्माण किया गया, और इस सुंदर वन का यहाँ पर निर्माण किया। सौभद्र मुनि की मूर्ति वहाँ स्थापन की गई, उसका इतिहास लिखा गया, और आप लोग भक्त लोगों को आकर आनंद हो, रमणीय स्थान का आनंद प्राप्त हो, लीला शैली को पुनर्विजित किया। इसलिए हृदय से हम सब लोग विनीत नारायण जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो लुप्त हो गई थी स्थान, उसको उन्होंने पुनः प्रकाशित किया, इतना सुंदर रूप से विकसित किया। हम लोग ने यहाँ पर कई यात्राएं की हैं, खड़े खड़े कथा की है, बैठ के कथा की है, सब यहाँ पर विहार किया है। तो भक्तों के माध्यम से ही दिव्य स्थलियाँ प्रकट होती हैं। भगवान की इच्छा से वो लुप्त हो जाती है, फिर भक्तों के माध्यम से पुनः प्रकाशित हो जाती है। हो सकता है आगे अगले 500,000 साल जगह ऐसी रहेगी, फिर कोई भक्त आएगा, फिर जीर्णोद्धार करेगा। तो हम सब लोग तो उनके ही कृपा पात्र हैं, क्योंकि वो कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं खुद, तब हम आके यहाँ पर आनंद लेते हैं। हरे कृष्णा। तो आप उसका दर्शन कीजिए। मैं उसके उद्घाटन में भी यहाँ पर आया था, तब वहाँ पर एक केवल कुआं था, अभी वो कुआं भी खोद कर पूरा जल अंदर से प्रकट किया है, परकुंड बनाया है। तो लीलाओं का स्मरण करते हुए दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और बस में बैठ जाइए। हरे कृष्णा।